पिछले अध्याय में ये देखा कि वेद ने रुचिका और सुधीर की सगाई में देखा कि माया और रैना वेद के ड्रिंक में नशीला पाउडर मिलाने की योजना बनाते हैं। इस अध्याय में रीना वेद को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है लेकिन विफल रहती है। रुचिका और सुधीर रिंग पहनते हैं, माया वेद को जूस देने की कोशिश करती है लेकिन अवनी के कारण ये विफल हो जाता है। शेखर मानवी को प्रपोज करता है और वेद इसे देखता है। वेद रैना का प्रस्ताव ठुकरा देता है। मानवी शेखर से शादी के लिए तैयार हो जाती है। अयान और सुधीर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बात करते हैं और अयान जोया के साथ अपने रिश्तों के बारे में बताता है। तभी जोया और सारा अंदर आती नजर आईं। अयान ध्यान से उनकी तरफ देख रहा था। दीपक ने हंसकर पूछा, इन दोनों में से कौन है? अयान ने इशारा किया, एक तो मेरी भतीजी है, बड़े भाई की बेटी, जो ब्लू कलर का सूट पहने खड़ी है, वही जोया, और दूसरी सारा, जिसने फ्लावर्स वाली फ्रॉक पहनी हुई है। वेद ने दीपक को टोका, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? सारा तो बच्ची है, साफ दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है, जो दूसरी लड़की है वही हो सकती है। असल में सारा की उम्र वाकई छोटी थी। इसी बीच पीछे से दानिश और जुबैर लॉन में दाखिल हुए। चारों तरफ बैठने की जगह देख रहे थे कि तभी उनकी नज़र अयान पर पड़ी। अयान ने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया। जुबैर और दानिश उसके पास आकर बैठ गए। दानिश ने मुस्कुराकर कहा, चाचू आप हमसे पहले आ गए। जुबैर हंसते हुए पास बैठ गया और बोला, हाँ अब तो मज़ा आएगा। खाने की स्टॉल वाली साइड पर शेखर और मानवी साथ खड़े हंस रहे थे। उसी वक्त शेखर ने पराठे लेकर मानवी की प्लेट में रखे और दही की तरफ इशारा किया। वेद ने गौर किया कि मानवी के पास खड़ी छोटी सी अवनी को शेखर ने अपनी गोद में उठा लिया था। शेखर का बेटा शशांक भी वहीं पास था। मानवी के हाथ में दो प्लेट्स थीं, उसने दोनों में पराठे रखे और दही भी लिया। फिर वो टेबल पर जाकर बैठ गई, एक प्लेट शशांक को दी और दूसरी से अवनी को खिलाने लगी। उधर शेखर ने अपनी प्लेट पकड़ी हुई थी और उसी से अवनी को खिला रहा था। ये नज़ारा देखकर वेद के माथे पर बल पड़ गए। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि शेखर अवनी पर इस तरह प्यार जता रहा है, और सच कहें तो मानवी और शेखर का यूं पास बैठना भी उसे खटक रहा था। वेद ध्यान से ये सब देखता रहा। टेबल पर बैठे सुधीर और बाकी लड़के उसकी तरफ देखने लगे, पर वे कुछ समझ नहीं पाए। हाँ, अयान जरूर चौकन्ना हो गया था, वो वेद को सबसे अच्छे से जानता था। क्या हुआ? दीपक ने धीरे से पूछा। किसी का जवाब न देकर वेद ने जेब से मोबाइल निकाला और सीधे गौतम को कॉल लगाया। कहाँ हो तुम और क्या प्रोग्रेस है? उसकी आवाज़ में किसी तरह की नरमी नहीं थी। गौतम ने झिझकते हुए कहा, आदमी काम पर लगा दिए हैं, काम चल रहा है, बस मेरी ट्रेन चलने ही वाली है, शाम तक आपके पास पहुंच जाऊंगा। वेद ने झुंझला कर काटा, ट्रेन? प्लेन की टिकट क्यों नहीं ली? ट्रेन से तो तुम पूरी जिंदगी में भी नहीं पहुंचोगे। सुनो, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। जितने आदमी हायर करने हैं करो, जितना खर्च करना है करो, मुझे बस रिजल्ट चाहिए और हर अपडेट सिर्फ मुझे चाहिए, समझे? मुझे डिले वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। गौतम तुरंत बोला, ठीक है सर, मैं शाम तक पहुंचूंगा, पहले आपका काम पूरा करता हूँ, फिर सीधी फ्लाइट लेकर आऊंगा। वेद ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे की सख्ती बता रही थी वो किसी भी हालत में नतीजा चाहता था, बहाने नहीं। कोई सीरियस बात है क्या? अयान ने हल्के से झुककर वेद से पूछा। वेद मुस्कुराया मगर उसकी आंखों में ठहराव था। सीरियस है या नहीं, शाम तक रुक जाओ, तुम सबको पता चल ही जाएगा। उसकी मुस्कान बेहतरीन थी मगर भीतर का राज छुपा नहीं पा रही थी। फिर उसने हाथ झटकते हुए कहा, अब मेरा मसला छोड़ो, इसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर तैयार करवाते हैं। उसी वक्त थोड़ी दूर बैठी अवनी पराठा खा रही थी। उसकी नज़र अचानक वेद पर चली गई। अगले ही पल उसने खाना छोड़ दिया और तेजी से उसकी तरफ भाग पड़ी। अवनी, कहाँ जा रही हो? मानवी ने उसे रोकने की कोशिश की मगर अवनी जैसे कुछ सुन ही रही रही थी। मानवी खुद वहीं ठिठक गई क्योंकि उसने पहली बार अवनी की आंखों में इतना खुला अपनापन देखा था। अवनी वेद के पास पहुंची और मासूमियत से बोली, गुड मॉर्निंग अंकल। वेद उसे देखकर खुश हो गया। उसने झुककर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। कैसी है मेरी प्रिंसेस? उसने अवनी को सीने से कस लिया। वेद का अवनी पर ऐसे प्यार जताना थोड़ा अजीब था क्योंकि वेद का उसके साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। सुबह सुबह ही वेदांत मेहरा होटल से निकल चुका था। उसे किसी खास शख्स से मिलना था। असल में जो प्लान उसने वेद के खिलाफ रचा था वो अब धुंधला होता जा रहा था। न रैना न माया, कोई भी उसे अपने करीब आने का मौका नहीं दे रहा था। जैसा वो वेद के बारे में जानता था हालात उससे बिल्कुल उल्टे निकल रहे थे। गुस्से और बेचैनी में उसने ठान लिया था अब खेल खत्म, वेद को हटाना ही पड़ेगा। वो दो घंटे तक होटल से बाहर रहा किसी रहस्यमयी मुलाकात में, और जब वापस लौटा तो दिन का आधा हिस्सा बीत चुका था। उधर होटल के बाकी लोग अपनी अपनी दुनिया में लगे हुए थे। किसी को जयपुर घूमने का शौक था तो कोई शॉपिंग में व्यस्त था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी नजरों के सामने ही एक घातक साजिश बुनी जा रही है। जोया, सारा, जारा और फिजा चारों ने पहले ही तय कर लिया था कि आज उन्हें जयपुर में शॉपिंग करनी है। उनका खास प्लान था कि राजस्थान की मशहूर घाघरा चोली खरीदनी है।
होटल में बाकी सबको उन्होंने न्योता दिया, मगर सारा की अम्मी नुसरत बेगम और जारा और फिजा की अम्मी शहर बेगम ने साफ कह दिया कि वे रेस्ट करेंगे और कहीं जाने का इरादा नहीं है। इसलिए चारों लड़कियों ने अकेले ही निकलने का फैसला कर लिया। जैसे ही वे होटल से बाहर सड़क पर पहुंची और टैक्सी लेने ही वाली थी, अचानक से एक चमचमाती कार उनके सामने आकर रुक गई। कार का शीशा नीचे हुआ और अयान की आवाज आई, जहां भी आप सबको जाना है, आपका ड्राइवर हाजिर है। उसकी बात सुनकर तीनों लड़कियां हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। इतनी मीठी और मजाकिया बोली, और वो भी अयान के मुंह से, शायद आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। जोया जैसे मना करने ही वाली थी कि पीछे से सारा ने कहा, चाचू अच्छा कि आप आ गए, हमें शॉपिंग करनी है। बस इतना कहते ही सारा ने फौरन पीछे का दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठ गई। जारा और फिजा भी हंसते हुए उसके साथ आकर बैठ गई। अब सिर्फ जोया बची थी। वो सोच में पड़ गई, क्या ये वही अयान है? इतना बदल कैसे गया? उसके लिए सिर्फ आगे वाली सीट खाली थी। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ही आ जाइए। जया ने चारों तरफ देखा, तीनों लड़कियां पहले ही कंफर्टेबली बैठ चुकी थीं। अब उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मारती क्या ना करती, उसने खिड़की खोली और अयान के साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ छलक रहा था। अयान ने एक नजर उसकी तरफ डाली, उसे ये गुस्सा और भी हसीन लग रहा था। वो मुस्कुराया, गाड़ी स्टार्ट की और बोला, तो चलिए जयपुर की शॉपिंग का मजा अब हमारी तरफ से। कार होटल से निकल चुकी थी और हवा में हल्की सी खनक घुल गई थी। एक तरफ लड़कियों का शॉपिंग का उत्साह और दूसरी तरफ अयान और जोया के बीच की अनकही तकरार। चाचू आपको कैसे पता चला कि हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? सारा ने सवाल किया। वो एक ही लड़की थी जो अयान से सबसे ज्यादा बोलती थी। वैसे भी उसे कहानियों में जीने का शौक था और दिल ही दिल में वो चाहती थी कि जोया और अयान की लव स्टोरी आगे बढ़े। अयान ने बड़े स्टाइल से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे हवाओं ने मैसेज किया कि हमारी शहजादियां शॉपिंग करने निकल रही हैं, तो मैं हाजिर हो गया। उसकी ये बात सुनकर सब हंस पड़ी। जया ने भी अयान की तरफ देखा, उसे लग रहा था जैसे उसके सामने कोई बिल्कुल अलग इंसान बैठा है, क्योंकि मीठा और प्यारा बोलना अयान की फितरत में कभी था ही नहीं। डियर रीडर्स, ये मेरी सीरीज का अगला हिस्सा है। आपको ये सीन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और साथ में रेटिंग भी दें।
आपके कमेंट हमें और लिखने का हौसला देते हैं।